संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जी विचरे हमारे। जो न बिजानति जुगवम अत्थे तिक्कालगे तिहुवरत्थे राधुम तस्य न शक्यम सपज्ययम दव्यमेघम वा। जाने नहीं युगपद त्रिकालिक अर्थ जो त्रैलोक्य के, हमको बिल्कुल ऐसा सहज लगता है कि सबको जानना और एक को जानने में तो बहुत फर्क है ना। सारी दुनिया को इस जितने जीव हैं अनंत अनंत और उनके उद्गल उससे भी अनंत गुण है, फिर एक एक में उनसे अनंत गुण है गुण, फिर एक एक गुण की उनसे अनंत गुणी पर्याय, इतना इतना सारा दुनिया तो बहुत होती है और एक जीव भी तो क्या, और वो खुद ही बिल्कुल पास में। तो जो एक जीव को जानना आसान है और सबको जानना कठिन है। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो सब पदार्थों को नहीं जानता है, उनके द्रव्यगुण पर्यायों सहित उनका स्वरूप नहीं जानता है, बात केवल ज्ञान की चल रही है, स्मृति ज्ञान पे घटित नहीं करना। यदि केवल ज्ञान सारी दुनिया के सब पदार्थों को नहीं जानता है तो वो एक अपने आत्मा को भी नहीं जान सकता। तो ये दुनिया को बहुत बड़ी अटपटी लगती है, ये कैसी बात करते हो, फिर सारी दुनिया को खाना नहीं खिला सकता तो वो खुद भी नहीं खा सकता, फिर सबको खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो अपने लिए नहीं कर सकता। ये बात बहुत अटपटी लगती है ना। ठीक है, कल अपन ने थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की थी कि एक आत्मा में भी उतनी ही बारीकियां हैं, वो पर्याय जो एक समय में एक खचित है, अब वो काल का जो समय है वो इतना छोटा है कि इस समय जो बात होती है वो असंख्य समय बाद हमारी समझ में आती है। भैंस को बहुत स्थूल बुद्धि माना जाता है, और जो भैंस का दूध पीते हैं ना तो उनको भी स्थूल बुद्धि माना जाता है, क्योंकि भैंस जैसी ही बुद्धि हो जाती है। तो क्या होता है उसको मालूम, जैसे कि अपने यहां दीवार के बगल में खड़े हैं और भैंस यहां से जा रही सीधे रास्ते में, तो उसकी इतनी समझ में नहीं आती है कि मैं जा रही हूं तो ये आदमी खड़ा है तो इससे मेरे थोड़े यहां हटके जाना चाहिए, उतना वो अंदाज नहीं लगा पाती। वो समझती है मैं निकल जाऊंगी और फिर वो आदमी वहां दबने लगता है, उसे पिच जाता है, तो पिच जाता है तो वो हाथ में डंडा लिए है तो बहुत डंडे मारता है भैंस को, लेकिन उसको बहुत देर बाद समझ में आती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो उसको दाबना चाहती है और वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, उसकी समझ में ही नहीं आती, डंडा पड़ रहे हैं तो अभी समझ में नहीं आती क्या हो रहा है, और फिर थोड़ा बहुत तकलीफ होती है तो फिर बाद में सोचती है कि यहाँ है एक कोई आदमी खड़ा है शायद ये दब रहा है, इतनी देर में समझ में आती है तब तक तो वो पिचल चुका होता है। हमारा थोड़ा उससे कम है लेकिन तो अभी असंख्य समय तो लगते ही है, इसलिए वर्तमान में तत्काल तो हम कोई चीज को जान ही नहीं सकते है? और फिर अगर हम कहते सोचेंगे 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 तो लोग कहते हैं कि जब तुम सोचोगे तब तक वो अवसर निकल गया होगा। बिजनेस में भी ऐसा होता है ना, बाजार में माल आता है खरीदते हैं लोग देते हैं सस्ता महंगा होता है, तो जब तक वो सोचता है तब तक फिर बाजार बिगड़ जाता है, मतलब कुछ आदमी जिन्हें उनको क्या बोलते हैं अपने दीर्घ सूत्री संस्कृत में, दीर्घ सूत्री शब्द तुमने सुना है कभी, उसका अर्थ जानते हो? कोई दीर्घ सूत्री माने बहुत धीरे धीरे सोचने के बाद बहुत देर में जिसकी समझ में आता है उसको दीर्घ सूत्री बोलते हैं। हमारे गुरुजी जी कहा कहते थे दीर्घ सूत्री है, मैंने बहुत देर तक उसकी समझ में ही नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी में भी कुछ बोलते होंगे इसको दीर्घ सूत्री को। तो ये कहते हैं कि वो जो तीन लोक के समस्त पदार्थों को उनकी गुण पर्यायों सहित नहीं जानते हैं, माने जो सर्वज्ञ नहीं हैं, वे वास्तव में आत्मज्ञ भी नहीं हैं। तो फिर समादृष्टि आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ऐसा ही जानते हैं, काम चलाओ। माने जैसा सर्वज्ञ के ज्ञान में स्पष्ट आत्मा के दर्शन होते हैं, आत्मा दिखाई देता है, उसके अनंत गुण दिखाई देते हैं, असंग प्रदेश दिखाई देते हैं, और अनंत अनंत पर्याय एक एक समय में बिल्कुल जुदी जुदी दिखाई देती हैं, समझ ना, ऐसी उसे दिखाई नहीं देती। तो समादृष्टि कैसे हो गया? समादृष्टि तो ऐसे ही ज्ञान में हो जाता है। यहां से आपको पर्वत दिखता है ना, पहाड़ी, तो दिखती है कि नहीं दिखती है? आप उसे जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे ही जानते हो। वहां जो बारीक बारीक चीजें हैं, एक एक पेड़ है, एक एक पेड़ में डालियां हैं, टहनियां हैं, उन्हें पत्तियां हैं, पत्तियों में फिर वो ऐसे ऐसे डोरे से निकलते हैं ना, वो हैं, तो आपको दिखते हैं क्या? नहीं ना। पर इसको भी तो जान नहीं बोलते हैं ना, कि यहां से हमें वो गमले में रखा हुआ जैसा वो दिखता है पेड़, ऐसा ही सम्यक दृष्टि को आत्मा दिखता है। सम्यक दृष्टि को कह रहा हूं मैं, सम्यक दृष्टि को ही नहीं, गणधर देव को भी, चार ज्ञान के धारियों को भी, द्वादश अंग के पाठियों को भी, क्योंकि आखिर वो श्रुत ज्ञान भी परोक्ष ही है ना। श्रुत ज्ञान माने आगम से जाना, उनने तो जैसे पढ़ के आपने जाना, जैसे पढ़ के उनने जाना, उनने ज्यादा डिटेल जान दी होगी, है ना? हमने डिटेल नहीं जानी, तो भाई फिर समर्थन कैसे हो गया? सम्यक दर्शन होने के लिए ऐसे ही जानना ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। बस वो गलत नहीं जानना चाहिए, सही जाने, भले ही बहुत अभिशब्द जाने, परोक्ष जाने जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, निर्मलता नहीं उस ज्ञान में, फिर भी उसमें ये मैं हूं ऐसा अपनापन आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन तो उस अपनेपन का नाम है, और जब तक वो उसमें अपनापन कायम रहेगा तब तक सम्यक दर्शन रहेगा। उपयोग बाहर भी रहे तो भी कोई बात नहीं है, पर वो बोल भी नहीं पाए त्रेंचों को हो जाता है ना सम्यक दर्शन। शंभु रमण समुद्र में कितने बड़े त्रेंच अनुष्ठान वाले कहते हैं ना, तो है तो वे तो बता तो नहीं सकते, बोल के तो नहीं बता सकते प्रवचन में कैसा है, बोल नहीं सकते। कोई बोल है तो सुन के भी नहीं समझ सकते हैं, है लेकिन उसको ही आत्मज्ञान बोलते हैं। तो वो यहां तो सर्वज्ञ के ज्ञान की बात कर रहे हैं, कि जैसा सर्वज्ञ एक द्रव्य को जानता है वैसा ही सबको जानता है, जो सबको जान सकता है वो ही एक को जान सकता है। और आंगली गाथा में ऐसा कहेंगे, जो एक को जानता है वो सबको जानता है। यहां तो अपने एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? यदि उतनी बारीकी से हमने एक को जान लिया, कल शायद अपने जो उदाहरण दिया था डॉक्टर का, कि उसने एक दो लोगों का हार्ट देख लिया, क्यों, और उस देख करके समझ लिया, तो उसने सबके हार्ट ऐसे ही हैं, ये जान लिया, बाकी इतना अपने शास्त्र में पढ़ के जान लिया, गुरुजी ने बता दिया। एक हार्ट का ऑपरेशन करते वक्त आपको बगल में खड़ा कर दिया और बताते गए थोड़ा थोड़ा दिखते दिखते, तो उसमें ही सब दिखता थोड़ी है। अभी अगर मैं तुमको देख रहा हूं, हाँ बिल्कुल बहुत एकदम स्पष्ट देख रहा हूं, लेकिन तुम्हारी पीठ मुझे नहीं दिख रही, पीछे का हिस्सा तो नहीं दिख रहा ना। तो उस ऑपरेशन करते वक्त भी एक एक पार्ट बगल का दिखेगा तो दूसरी तरफ का नहीं दिखेगा, ख्याल है ना। मानो बहुत बड़ा हिस्सा बिना देखे भी रह जाता है। अब वो तो आपको कहता बस इतना ही दिखाना है, कभी यहां से ऐसा चीरा जाता है, फिर इस नस को इस तरह से निकाल लेते हैं, दूसरी लगा देते हैं, ऐसा कर दे, सिलाई कर देते, जो भी मतलब दो मोटी मोटी बातें हैं, वो बता देता है और वो हो जाता है। ये कोई अब वही स्पेशलिस्ट है, और चूंकि किसी जीव पर वो प्रयोग करता है, और अपनी लाइफ बहुत कीमती है। कितनी कीमती है अपनी लाइफ? जितने पैसा अपने पास हो, लाख रुपए हो तो लाख रुपए की, अरब हो तो अरब की। यदि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे और 10 करोड़ मांगे तो इसके पास 10 करोड़ होंगे वो करा लेगा, अपन नहीं करा पाएंगे। और एक लाख मांगे तो अपन भी करा लेंगे। मेरा मतलब यह है कि वो तो उसकी हैसियत पर निर्भर करता है, और वो डॉक्टर क्या जानता। जैसे अपने कुर्ता फट गया और अपन ऐसे टांगे लगा देते हैं, और थोड़ा ऐसा होता है भविष्य होकर के चलता है गाड़ी, ऐसे ही उसका है, चीर चार डालते हैं, ऐसे टांगे लगा देते हैं, फिर वैसे ही चलते हैं। उसी को ज्ञान कहते हैं। थेउपशम ज्ञान की यही दशा है। कहीं का भी ले लो, किसी का भी ले लो, कैसा भी ले लो, और केवल ज्ञान की बात यह है कि एक एक को जानेगा वो सबको जानेगा, और जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा। वो उसमें ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा जान लिया थोड़ा नहीं जान लिया। जब स्वामी जी की क्रमद पर्याय की चर्चा ने जोड़ लिया, तो उस वो जमाना था आज से 50-60 साल पहले का, कि जो बड़े बड़े विद्वान थे, महेंद्र कुमार जी, न्यायाचार्य कैलाश चंद जी वगैरह, और जो जो बना सब जगह सारे देश में न्याय अलंकार न्याय पुण्य माणिक चंद जी कौंदेय न्यायाचार्य मक्खनलाल जी न्याय अलंकार, न्याय के बहुत बड़े बड़े पंडित थे। वो सारी जिंदगी जिनने सर्वज्ञता पढ़ी थी और पढ़ाई थी, समझ में आई ना, वो सबका अंदर से हिल गए। क्योंकि यदि ज्ञान भविष्य का जानता है तो भविष्य को नक्की मानना पड़ेगा, और वे सर्वज्ञ भी मानते थे और भविष्य का नक्की है ऐसा भी नहीं मानते थे। वो सब हमारे हाथ में है, और बड़े जोर से भाषण देते थे, हम जैसा करेंगे वैसा होगा, और क्या क्या थी अभी हम कहना नहीं चाहते। तो खत्म, अभी आज हम रोजीना उपदेश देते थे, ले लो व्रत। यानी व्रत समय दर्शन के बिना नहीं होते हैं, ये ऊपर से नीचे तक कोई नहीं कहता था। अब शास्त्र में तो कितना साफ साफ लिखा है, अपन लोग पढ़ते हैं ना, ले लो ये, ले लो ये व्रत, ले लो ये व्रत, ले लो ये, ले लो ये प्रतिज्ञा ले लो। ये भी नहीं कोई बताता था कि जैसे कि रात्रि भोजन तक आचार किया तो रात्रि में पानी भी छोड़ दो, तो ये कौन सी प्रतिमा में होना चाहिए। दादा आपको पता होगा, जगनमोहन लाल जी सुनाते थे, बर्णी जी सम्मेद शिखर पहुंच गए थे और वहां सारे विद्वानों का सम्मेलन था, उस वृत्ति का नाम रखा था वृत्ति सम्मेलन। तो जितने भी प्रतिमाधारी पंडित थे, पंडित विद्वान जितने जो भी थे, वो सब पहुंचे थे, और प्राय सब पंडित 2-4 प्रतिमा तो ले ही लेते थे। हमारे गुरुजी मक्खनलाल जी ने भी दूसरी प्रतिमा ले ली थी, और भी सब को पता नहीं समय दर्शन है कि नहीं है, उसी तो बातें ही नहीं करते थे कि होने जरूरी है कि नहीं है। तो वहां क्या सम्मेलन हुआ, बर्णी जी की अध्यक्षता में बता रहा हूं मैं आपको, कि भाई पूरा क्लियर नहीं है कि असम्य दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला है तो उसका कैसा आचरण होना चाहिए, फिर पहली प्रतिमा वाले का कैसा होना चाहिए, दूसरी प्रतिमा वाले का कैसा होना चाहिए, फिर पांचवी प्रतिमा का कैसा, सातवीं का प्रतिमा, ऐसा क्लियर नहीं है। वो शास्त्रों में पढ़ करके भी उस वक्त सब लोग कन्फ्यूजन में थे। तो जगन मोहन लाल जी हमें सुनाते थे, वे भी अनुवृत्ति थे, कि जो जो वे अनुवृत्ति थे ना, वे कहें कि रात्रि भोजन नहीं करना, तो रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है छठवीं, तो वो छठवीं क्यों है? जब हम साधारण से ही व्यक्ति को रात्रि भोजन नहीं करना, ऐसा है ना, सबको प्रतिज्ञा दिलाई ना आप सब उन लोगों को, हम सब इसमें, अब कहेंगे तुम पानी भी नहीं पी सकते, दूध भी नहीं पी सकते, तुम फल भी नहीं ले सकते, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए, तब वो रात्रि भोजन त्याग किया है। और हमारी कल्पना बहन जैसी कुछ विद्वान विद्वसी थी, वो तो कहते रात में तूने पानी पिया तो खून पिया है, प्रचंड में ऐसा बोले। तो फिर जगन लाल जी बोले कि मैंने कहा कि तुम बिल्कुल साधारण से पाक्षिक श्रावक को, जिसने अभी कोई प्रतिमा नहीं ली, जिसने कसम्मा दर्शन भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं जानता है, उसे तुम ऐसा रात्रि भोजन त्याग कराओगे तो फिर छठवीं प्रतिमा में क्या कराओगे? समझ रहे कि नहीं? तो छठवीं प्रतिमा में मान लो चारों प्रकार के आहार का त्याग कराना है, तो फिर वो छठवीं में रखा, इसका मतलब पांचवीं तक वैसा नहीं है, तो पांचवीं में क्या शिथिलता है वो आपको बतानी पड़ेगी ना, चौथी में क्या पोजीशन है? ऐसा था कि मन वचन काय कृत काय तन बोधना से होना चाहिए, मैं थोड़ा नमूना बता रहा हूं। तो मैंने इसमें क्या, ना खुद पीना ना पिलाना ये सब आ गया ना, ना उसकी अनुमोदना करना। तो एक महिला बच्चे को दूध पिलाएगी कि नहीं रात को, कि शाम से बस उसको 12 घंटा बच्चे को भूखा रखेंगे, ये समस्या चलती थी क्या? अब प्रतिमा छठवीं ले लेती थी, फटाफट देना उसके, ऐसा नहीं करना ये नहीं करना, दो चार बातें बताई तो बस वो ले लेती थी। और अब बच्चा है, अब कहते नहीं पिला सकती, रात्रि भोजन त्याग है उसको, वो कहते अब कृत का आदान बोधना नहीं कर सकती। ये सच्ची घटना है। हम बमीना में थे तो एक भाई थे जो वहां प्रवचनकार थे, उनके छोटे भाई थे, वो भोले भाले जीव थे, तो हमारे पास आए। अब बोले पंडित जी मेरी एक समस्या है। क्या है बोलो? बोले मैंने दूसरी प्रतिमा ले रखी है, फिर मैंने अब तीसरी भी ले ली, उसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं, तीन टाइम में सामायिक तो करता ही था, सामायिक प्रतिमा में है क्या सामायिक करना, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने 5 मिनट बढ़ा दिया, मैंने आधे घंटा करता था तो 35 मिनट 40 मिनट करने लग गया, तो सामायिक प्रतिमा हो गई। अब मैं प्रोसत चौथी प्रतिमा लेना चाहता हूं, लेकिन एक दिक्कत है कि मुझे एसिडिटी बहुत बनती है, इसलिए प्यास बहुत लगती है, तो मैं अश्वमेध चतुर्दशी का उपवास नहीं कर सकता हूं। कैसा वो होता ना, कितना 48 घंटे का, समझ गए ना, वो नहीं कर सकता। तो फिर मैं हमसे क्या चाहते हो, आप मुझे को उसमें बस एक दिन का बाद इससे बना, ये सुविधा दे दो कि मैं वो प्रोसदो बास नहीं करूं, प्रोसद प्रतिमा का नाम है ना। तो मैंने कहा तुमको ये किसने कहा कि ये हमारे हाथ में है, हम कोई एजेंट हैं भगवान के, हम किसी को सुविधा दे सकते हैं, क्या कर सकते, हम तो शास्त्र की बात बता सकते तुम्हें कि उसमें क्या होना चाहिए। नहीं साहब, आप तो कोई रास्ता निकालो। तो मैंने कहा कि आप तीन ही प्रतिमा रहन दो ना, ऐसा कौन सा काम है आपका जो चौथी प्रतिमा के बिना अटक रहा है? नहीं मैं इतनी सी बात, पर मेरे को उपवास नहीं होता, पर उसमें सुविधा मिल जाए तो मैं तो फटाफट पांचवीं भी ले लूं, कि पांचवीं का तो नाम ही है सचित्त त्याग, उसमें क्या है, वो तो छोड़ ही दूंगा बस। हरियाली मरियाली तो हम खाते ही नहीं है, तो भाई अस्मिता दशी को तो छोड़ना है। अब वो सब हरियाली कब छोड़ना, कौन, बिल्कुल किसी को कुछ स्पष्ट नहीं था। आज भी क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं है। फिर तो वो हरे कहेगा नहीं, पहली प्रतिमा, पहली प्रतिमा क्या समय देश में, पहली प्रतिमा के पहले ही ये सब होना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग में, रात्रि अनशन दल का त्याग भी बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकता है। अब वो समस्या खड़ी होगी, नल आ गए ना, तो कुएं में बेलछनी नहीं जलती है, अब वो बेलछनी बाल्टी में वैसा डालो और लगा करके, तुमने देखा ना जो करते हैं, अब वो सारी समस्याएं खड़ी हो गई। तो ये सब चलता था, तो क्लियर नहीं था। तो मैं एक ही बात कहता था कि जब हमारे वही वृत्त इतने ऊपर जाकर के है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे तक होता ही नहीं है। मेरा मन ये समझ गया, सप्तमी प्रतिमा में यदि रात्रि भोजन त्याग है, तो चार प्रकार के आहार का त्याग रूप रात्रि भोजन वो छठवीं प्रतिमा में होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो ये नहीं होगा कि वो रोजीना रात्रि में खाना खाएगा, लेकिन उसके इतने तारतम्य भेद होंगे। लेकिन हरेक की ये पोजीशन है, इन व्रत लेने वालों की, जो उनने ले लिया पर उसके बिना जो है वो महाभ्रष्ट है, बस वो तो सीधा साथ में नरक जाने वाला है, उसके बिना वो कुछ नहीं है कदम। और उनने नहीं लिया तो उसमें कुछ नहीं है, फिर वो उसका समर्थन करेगा। तो हमें बताओ कि जो तुम्हारी कौन सी प्रतिमा है। अब आज के इन ब्रह्मचारियों की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई ये मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो सब हैं, क्या है पता ही, भगवान जाने क्या नहीं क्या है। बहुत बड़े आदमी के नाम लेने में डर लगता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कहता हूं, शांति जी आपके वो थे ना तात्या जी, समझ गए ना, माणिक चंद जी चबरे विद्युत परिषद के अध्यक्ष बन गए थे। तो वो पहले हमें जैसा कुर्ता ही पहनते थे खादी का, और शायद टोपी तो नहीं लगाते थे, कुर्ता पहनते थे बहुत मोटा मोटा और रंगीन, वो इस कलर का ऐसा कुर्ता पहनते थे और धोती पहनते थे। फिर उनने बस कुछ दिनों बाद में कुर्ता छोड़ दिया और चदरा ओढ़ लिया, कोई बोलते सिले वस्त्र का त्याग, मैंने बनियान भी नहीं, वैसा जो बाजार से आया था चदरा ले लिया, उसे ओढ़ लिया, वो पहन ली धोती, मतलब वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा छोड़कर त्याग कर दिया। हम बाबू भाई थे, क्या हो गया, कोई ने प्रतिमा मृतमा ले ली होगी ज्यादा, पहले जो उनकी होगी उससे कुछ आगे बढ़ गए होंगे ना, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो हमने पूछा बहुत विनय पूर्वक, बहुत प्रेम था हमारा उनसे, बहुत अच्छे विद्वान थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे सच्चे दिल से, क्या तात्या जी आपने कोई और प्रतिमा वगैरह ले ली क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो पहले जितना व्रत थे वे ही हैं क्या, हाँ, तो फिर आपने चदरा का घोड़ा कुर्ता क्या खराब था, वैसे ही नहीं, अभी तो हम भी ओढ़ लें, हम भी कुछ ओढ़ दें, अब ये तो हम कर ही सकते हैं ना, कि चदरा कुर्ता नहीं पहने तो चदरा ओढ़ लें, इससे कदि कुछ हम धर्मात्मा ज्यादा हो जाएं और एकाध सुरग ऊपर चले जाएं, कोई गारंटी हो धर्मात्मा होने की, तो हम ये कर सकते हैं, एक चदरा ओढ़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बोलो तो बहुत ध्यान गए ऐसे कहने लगे, नहीं मैंने कुछ लिया है, मतलब ये प्रतिमा पहले मान लू, दूसरी थी, अब थी, चौथी कर ली, पांचवी कर ली, क्या नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं किया फिर भी बदल दिया, क्या मतलब। टोडरमल जी ने कितना साफ लिखा है कि जब कोई अपने यहां तीन ही लिंग हैं, कौन कौन से, एक मुनि का, एक आजिका का और एक उल्लख छुल्लक अलग उत्कृष्ट श्रावक का, और दूसरे कोई देश है ही नहीं, है ना। तो ये चद्रा ओढ़ना ये कौन सा देश है, इसकी क्या जरूरत है? और जैसे कोई आप और हम जो भी हैं ब्रह्मचारी आज के, रामजी भाई भी वैसे थे, श्यामचंद भाई भी वैसे थे, उन लोगों ने भी ब्रह्मचारी व्रत ले लिया था पूज्य गुरुदेव श्री से, और वो वहां रहते थे, और वो लोग चद्रा ओढ़ते थे, टोपी लगाते थे। बाबू भाई भी ब्रह्मचारी थे, वे भी चद्रा ओढ़ते थे, टोपी लगाते थे, वो नहीं कुर्ता पहनते थे, चोटी लगाते थे। तो मेरे कहने का मतलब, आखिरकार वो वित्तीय सम्मेलन बर्नी जी की उपस्थिति में फेल हो गया, उसमें कोई निर्णय नहीं कर पाए, पहली प्रतिमा से ऊपर नहीं बढ़ पाए, क्योंकि सब लोग वे सारे कड़क नियम सुनो कौन से, कि जो दसवीं प्रतिमा में भी नहीं होते हैं वो पहली में लगे, वो कहने पे उतारू थे, वो ये होनी चाहिए। तो जगन मोहन जी कहे तुम ठीक है रख लेते हैं, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है, लेकिन फिर आगे दूसरी में क्या करोगे, तीसरी में क्या करोगे, चौथी में क्या करोगे, पांचवी में, स्टेज बढ़ते बढ़ते वो क्षुल्लक ऐलक होगा तो उस वक्त क्या पोजीशन होगी उसकी। तो हमको वो पांचवें गुणस्थान में कैसा होता है आचरण, इतने सारे चरणन योग के शास्त्र हैं उनके आधार पर हम नहीं निर्णय कर सकते, तो बहुत स्थूल कथन है। अब अपने विवेक से निर्णय हम कर सकते हैं। अब वो जो बाह्य आचरण है, अहिंसक आचरण जो भी, उसका खुद भी निर्णय तक नहीं है कि क्या है, हम कहां खड़े, और उसको लेकर के हम दूसरों को चाहे जो कुछ कहते हैं, भ्रष्ट कहना, जो भी कहना, आरोप लगाना, तो धर्म नहीं जानता, धर्म धर्मात्मा नहीं है, जो भी लगाना करते हैं। कभी ऐसे क्या चीज है बताओ तो, कि जिसकी वजह से कि ये लिखा है शास्त्र में, कोडम जी ने कितना क्लियर लिखा कि एक क्या हमारी दूसरी प्रतिमा की क्या ड्रेस है, बोलो तीसरी प्रतिमा की क्या ड्रेस है, चौथी प्रतिमा की क्या ड्रेस है ना। अब ये एक भी प्रतिमा नहीं है, इतना तक पता नहीं है कि अभी प्रतिमा नहीं है, हम ले आएंगे जयपुर से दो तीन प्रतिमाएं, जितनी का उतनी ले आएंगे, वो प्रतिमा का स्वरूप नहीं समझते हैं। इसलिए कहते हैं, और अभी ये सर्वज्ञता का स्वरूप, इसके जाने बिना तो धर्म शुरू नहीं होता, वो पाक्षिक नहीं है। पाक्षिक समझते हैं, जिसे जैन धर्म का अकेला पक्ष है, और मैं जैनी हूं, लड़ने मरने को तैयार है जैन धर्म के नाम पर, कोई जैन धर्म को गाली नहीं दे सकता है। क्या संलेखना है पे हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन संलेखना का अपमान नहीं होने देंगे, लेकिन बेटा संलेखना है क्या है? क्या क्या चीज है वो, समझता कोई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जैसा कुछ होता होगा, मैंने बिल्कुल कुछ पता नहीं है किसी चीज का, और साधे समाज को उत्तेजित कर दो, साधे समाज तैयार है। अभी तो जरूरत है थोड़ी उत्तेजना की, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी है कि उसके बिना कोई सुनती नहीं है, है ना। मैं उसके बारे में कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको उसको समझना तो चाहिए। जितने लोग हैं उनके उतने उतने अलग अलग नियम हैं। अभी यहां गुजरात तरफ चले जाओ तो वहां तुम्हें टमाटर हरी नहीं है, हरी का त्याग कर देना अष्टमी को, वो तो लाल है, केला भी हरा नहीं है, ये केला सब खाते हैं, और कुछ लोग तो फल सब खाते हैं, है? और सब्जियों में भी कई सब्जी उन्होंने उस हरी के बाहर निकाल रखी है, और कई लोग उससे बहुत बहुत कड़क हैं, ये है वो दुदल मानते हैं ना, तो कई तो थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं छाछ को, और उसमें से कुछ भी डाल के अपने आराम से खाते हैं, और मैं बड़े बड़े लोगों के नाम बता सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, ये सब खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दूध में बादाम डाली तो ही हो गया, क्योंकि बादाम के भी दो पल्ले हो जाते हैं, आप समझे ना। और वो दूध में, वो दही नहीं, दूध में। अब दूध में तो कौन सी जैन समाज में वो दूध में डाल देते हैं ना, बादाम बादाम जो पिस्ते में से, तो ऐसा दूध कौन नहीं पीता है, कितना त्यागी है। और कुछ यानी मेरे कहने का मतलब ये है, सब मिलके हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि हम सारे देश में सारा एक संप्रदाय में, एक संप्रदाय में भी हम निर्णय नहीं कर सकते कि ये ऐसा है। तो अपने अपने मन के हिसाब से परिस्थिति चलती है। जब तक हम मृत्यु के निकट नहीं पहुंचे, मैंने मर नहीं रहे हैं, तो हम जीने के लिए खाना तो खाएंगे ना, जो भी शुद्ध सात्विक हम कुछ भी त्याग दें मतलब, लेकिन शरीर चले ऐसा खाना तो खाएंगे ना, चाहे उसमें अनाज रखें, चाहे फल रखें, चाहे दूध रखें, चाहे उनमें सब थोड़ा रखें, कोई रखें, लेकिन वो शरीर चलता रहे, क्योंकि हमने अभी वो ये तो लिया नहीं कि वो तो आज्ञा ही नहीं है कि जब तक हम जिंदा रह सकते हैं और उसका हम उपाय है, तब तक तो हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि फिर त्यागना तो उसका मतलब है कि फिर तो वो सीधे हम आत्महत्या पे जा ही रहे ना। हमें अभी जिस चीज की शरीर के पोषण की जरूरत है, हमने वो भी त्याग दिया। वो जो त्याग करते हैं वो शरीर को जो अधिक आवश्यक है वो उसको रखते हैं, जिससे वो शरीर चले। तो मेरे कहने का जिंदा रहने के लिए खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मैं आपसे पूछता हूं। किस संदर्भ में पूछ रहा हूं मालूम, कि जीने की इच्छा भी अतिचार है संलेखना का, और मरने की इच्छा भी अतिचार है। तो हम जो भोजन करते हैं वो तो जीने के लिए ही करते हैं कि नहीं करते हैं। संलेखनाधारी भी जब तक उसने त्याग नहीं किया ना, उसने पानी का त्याग नहीं किया, तो पानी भी लेगा ना तो काय के लिए लेगा, जीने के लिए ही लेगा ना। मतलब मैं अपनी धर्म साधना करता रहूं, जिंदा रहूं। अब वो जीने के लिए खाएगा तो, लेकिन मरने के लिए खाना छोड़ नहीं सकता। क्या कहने, अब इतनी छोटी सी बात है कि कैसे नहीं छोड़ सकता, कि आप तो फटाफट छोड़ रहे हैं, हैं? अब उसने 8 दिन से नहीं खाया, 10 दिन से नहीं खाया, 21 दिन से नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्या नहीं खाया, वो शरीर को क्षति हो रही ना, कल फिर तो इसके काबिल भी नहीं रहेगा, हैं? क्योंकि वो हम मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो कब फिर कब छोड़ेंगे हम, छोड़ने की बात तो है ही ना आखिरकार। ये तो हमने शास्त्र में पढ़ा ही है कि पहले अनाज छोड़े, फिर गोरस रखे, फिर गोरस छोड़े, फिर पानी भी छोड़े, तो क्रम तो है ना। तो वो कब है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। तो वो सूत्र क्या है कि जो अनाज पहले शरीर को पोषण देता था, जब वो ही अनाज शरीर को तकलीफ पहुंचाने लगे, मैंने पचे नहीं तो पेट साफ नहीं होगा, पेट में दर्द होगा, कोई कब्जियत हो जाएगी, तो वो छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ना मालूम, ऐसा नहीं चाहे जो छोड़ना चाहे जो रखना, जो जो शरीर लेना स्वीकार करना बंद कर दे, समझ गए ना आप, शरीर अपने आप करेगा, वो तुम्हें नहीं करना है। वो तो यदि रोटी पचना बंद हो जाए तो रोटी छोड़ दे, वो चावल पचना है तो चावल रखे, चावल पचना बंद हो जाए तो चावल छोड़ दे, और रोटी पच रही है तो रोटी रखे, और अनादि पचना बंद हो गया है तो अकेला पेय पदार्थ रखे। फिर वो ही पचना बंद हो जाता है, थकता ही नहीं है, वो खुद कहने लगता है ना, जब बीमार होता तो मरीज कहने, नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं है, मेरे अपन जबरदस्ती उसे 2 चम्मच दूध उसके मुंह में जबरदस्ती बच्चे के मुंह में डाल पाते हैं, क्यों, बुढ़े की तो इसलिए कहेंगे वो धर्म की वजह से त्याग रहा होगा कि मैं नहीं पीऊंगा ये दूध तो मैं मोक्ष चला जाऊंगा, और पी लूंगा तो नरक चला जाऊंगा। लेकिन वो बेचारा बच्चा है ना 4 साल का, उसे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन वो भी नहीं लेता ना दूध को, और वॉमिटिंग कर देता है, कर देता है कि नहीं कर देता है, और 10 लग जाते हैं, तो वो भी नहीं पीता है। तो मतलब शरीर ने इंकार कर दिया कि अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, वो चीज छोड़ता जाता है। अब वो मोटा मोटा अपन सब जानते हैं कि पहले क्या चीज ऐसी है जो पहले पचना बंद होगी, तो वो तो स्थिति कैसी होती होगी। अभी तो हम बिल्कुल स्वस्थ चलते फिरते हैं, बढ़िया हैं, पता कि साहब हमें संदेह ना दे दो, क्यों हमने ले लिया, हमें बढ़िया, अब नहीं जीना, हमने बहुत जी लिया, ना लड़का सीधे मुंह बात करता है ना बहू सीधे मुंह बात करती है, अब क्या करें जी के। तो लड़का सीधे मुंह बात करने लगेगा तो फिर चलेगा, है कोई तुम्हारे पास ऐसा जादू तो करो, हम नहीं मरेंगे, नहीं जाएंगे। तो सीधी सच्ची मरने की बात है, इसमें संलेखना क्या है? ये तो लोक में अनुकूलता नहीं है, इसलिए तू ये कह रहा है ना, मेरा मतलब समझ गए ना। तो वो जब पोजीशन आती है त्याग, कोई चीज मैंने जिससे हमारा जीवन चलता है उसका भी त्यागने का प्रसंग आता है, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब बहुत देर हो चुकी होती है, माने वहां से वे लौटना संभव नहीं होता, तब वो प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैंने अनाज छोड़ा। लेकिन हमको दो दिन बुखार आ जाए और हमें वो खाना नहीं खाए, वोमिटिंग होने लग जाए, तो हम जीवन में के लिए अनाज छोड़ दें, क्योंकि वो तो हमें पचता नहीं है। और बताया था शास्त्र में लिखा है कि अनाज पचना बंद हो जाए तो छोड़ देना चाहिए, हमने छोड़ दिया, चलेगा चलेगा। डॉक्टर कहेगा 2 दिन बाद बुखार कम हो जाएगा, तो बहुत जोर की भूख लगेगी, टाइफाइड हो गया है इसलिए अभी भूख मर गई है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो कुछ नहीं है निर्णय, कुछ नहीं है। तो वो सब करना चाहिए ना पहले निर्णय, हमें समझना चाहिए ना। आचार्यों की भी आज्ञा, आचार्यों ने भी बहुत इतना ज्यादा साफ नहीं लिखा होता है, उनको हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, तब हमारी बात समझ में आती है। अब देखो एक तो अपन बहुत साधारण सी बात लिखते थे, एकम जाना थी सब्बम जाना थी, सब्बम जाना थी एकम जाना थी, जो सबको जानता है वो एक को जानता है, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, 2 गाथाएं। कहना क्या चाहते हैं ये, ऐसा कहेगा कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जब हमने इस समय सार के इतने बारीक अक्षर बिना चश्मा के पढ़ लिए तो प्रश्न सार के क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? फिर उतने बारीक अक्षर किसी के भी होंगे, अखबार के भी होंगे तो पढ़ लेंगे, इतनी सी बात है कि इसके पढ़ लेंगे तो सबके पढ़ लेंगे, और यदि सबके नहीं पढ़ पाएंगे तो हम इसके भी नहीं पढ़ पाएंगे। क्या हम इसको तो धड़ाधड़ पढ़ते जाते हैं और वो अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, तो तुझे जो याद है पूजने याद हो जाती है ना, तो फिर वो ऐसा देख ले रख लेता है पूजा की किताब और बस अपने बोलता जाता है। क्या ये जो पुरानी देवशास्त्र गुरु पूजन थी ना बबलू, तो उसमें एक आती थी पंक्ति, जे त्रिजग उदर मझार प्राणी तपत अति दुर्धर करे, वो जे आती एक त्रिजग उद्यम नाश कीने मोह तिमिर महाबली। तो एक आता था ये इधर अक्षर वगैरह के छंद में, और एक आता था दीप का छंद, त्रिजग उद्यम में दीप के छंद में आता था और जे इसमें। तो जब यहां दीप के छंद पे जाते थे तो वो अपने ऐसी मस्ती में बोलते रहते थे ना, तो त्रिजग उद्यम नाश कीने की जगह त्रिजग मझार प्राणी इस पे आ जाते थे और लौट के फिर वही शुरू हो जाता था। एक बात मिल जाता है ना तो वो किताब में रखते, वो समझते हम किताब पढ़ रहे, वो तो याद है उसको, वो अक्षर इतने हैं उनको नहीं पढ़ रहा, वो जरा सा देखता है और पढ़ता जाता है, समझ गए ना। अपन को ये गाथा याद है प्रजन सार की, समय सार की पढ़ी है, तो हमें ऐसे इस देखने का हम पढ़ लेते ऐसा कुछ नहीं है। जब हम यदि एक टाइप पढ़ लेंगे तो सब पढ़ लेंगे ना, अब सर्वज्ञ हो गए, माने अब उनका कोई आवरण कर्म नहीं रहा, तो फिर वे सबको क्यों नहीं जानेंगे? क्या सबको जान लिया तो एक को क्यों जाने? फिर एक की बात कहां रह गई? एक माने अपना आत्मा, एक एक समझ लो हमेशा। एक हमने अभ्रंश का विद्वान है डॉक्टर नामवर सिंह, नाम सुना हो तुम लोगों ने, तो हमने उसका साहित्य पढ़ा था, तो उसने एक जगह लिखा था कि जैन धर्म में अभ्रंश भाषा में जहां एकम एक लिखा हो तो उसका अर्थ आंख मीच कर आत्मा कर देना। क्या मैंने वो अजैन विद्वान नामवर सिंह ठाकुर ठाकुर एक वो उसका विशेषज्ञ था ना, तो वो धीरे धीरे उनको इतना अभ्यास हो जाता है तो फिर वो यहां पढ़ते हैं ना, और 90% यहां पढ़ते हैं, यहां यहां से बोलते हैं, और 10% यहां पढ़ते हैं। अब तुम दूसरी किताब ऐसी रख दो जो बिल्कुल हमारे लिए अपरिचित हो तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्योंकि आंखें खराब होंगी। इनमें आंखों का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बारीकियां दोनों में एक सी हैं, माने एक द्रव्य की एक गुण की एक पर्याय एक समय की हो और दूसरे द्रव्य की किसी गुण की पर्याय तीन समय की हो ऐसा नहीं है, वो तो सबकी एक ही समय की होगी। मेरा मतलब समझ गए ना, सब में एक साहीपन है तो सब क्यों नहीं जानेंगे? देखो अपन पढ़ते हैं इसको, इस विश्व में एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, असंख्य काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य और जीवों से अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य हैं। अब कभी कभी ऐसा अटपटा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और फिर पहला भाग पढ़ाने लगते हैं, क्यों? ये तत्वासूत्र में पढ़ लिए ना कि कौन द्रव्य कितने हैं, लेकिन भाई साहब वो बात कहने के लिए ये सामान्य बातें कहनी पड़ती हैं, नहीं वो वहां तक पहुंचे कैसे, समझे ना? आकाश है ना, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असंख्य काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य और जीव द्रव्यों से अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य। इन सभी द्रव्यों की अर्थात प्रत्येक द्रव्य की अतीत अनागत और वर्तमान भेद वाली निर्वधि वृत्ति प्रवाह है। निर्वधि माने अनादि अनंत, जिसकी ना तो भूतकाल में कोई अवधि है और न भविष्य में भी कोई अवधि है, मर्यादा अवधि माने मर्यादा, तो वो निर्वधि हो गई ना। तो निर्वधि माने क्या हो गया? क्या कोष्टक में अनादि अनंत लिखा है? क्यों लिखा बबलू? क्योंकि उसकी कोई मर्यादा नहीं है, इसका मतलब अंत नहीं आएगा, न भूतकाल में कोई अवधि है, मैं कह रहा था यहां से बस यहां से लेके यहां तक, और न भविष्य में अवधि है। ऐसी निर्वधि कहा है? निर्वधि वृत्ति प्रवाह। अब ये वृत्ति प्रवाह क्या है? भाषा तो बात तो वही है, भाषा ये कि वृत्ति प्रवाह माने ऐसा जो बहने का प्रवाह है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर होता ना, ये पर्यायों के लिए कहा जाता है, और ऐसा तो होता है ना वो प्रदेशों के लिए कहा जाता है, प्रदेश ये पर्याय, और ऐसा घनीभूत होता है ना ये गुणों के लिए कहा जाता है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है, खचाखच गुण भरे हुए हैं, आप समझ गए ना, और एक एक प्रदेश में ऐसा अलग अलग प्रदेश है और एक एक पर्याय है ऐसा, यानी लंबाई वो पर्यायों से नापी जाती है, चौड़ाई प्रदेशों से नापी जाती है, मोटाई गुणों से नापी जाती है। कोई भी चीज, ये तीन चीजें बतानी पड़ेंगी उसमें, या तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और मोटाई होगी, इसके बिना कोई लोक में पुद्गल पदार्थ आपको दिखेगा नहीं। अभी देखो ये है, तो इसमें है ना तीन चीजें, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये मोटाई। अब इनके बिना कोई किताब हो सकती है? उस चौथी चीज इसमें हो सकती है, चौथी वजह मोटना प्रकाश है वो द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, समझ गए ना, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो लंबाई द्रव्य की नापी जाती है आत्मद्रव्य के लिए, तो आत्मद्रव्य की लंबाई वैसे तो वो छोटे से चुनती के शरीर में आ जाता है, हाथी के में फैल जाता है, लोक पूर्ण भी हो जाता है, इसलिए हम क्या कहें, एक एक समय में उसकी पर्याय बदलती रहती है। कल परसों सुबह के प्रवचन में आ रहा था टीवी पे कि वो 49वीं गाथा का अर्थ बता रहे थे कि अनिर्दिष्ट संस्थान, उनका उसका आकार क्या है कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, कहते जैसे कि जिस देह में जाएगा उस देह के आकार, ऐसा कहा तो उस देह का क्या आकार है बोला, कि मनुष्याकार, मनुष्याकार तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का नाम है, लेकिन 24 घंटा एक से ही आकार रहता है कि बदलता रहता है, बस एक अभी ऐसे बैठे ऐसे हाथ कर लिए तो ये आकार बदल गया, अब ऐसे कर लिए तो ये बदल गया, तो हाथ नहीं बदले बस ऐसे ही बैठे रहे फिर तो नहीं बदलेगा ना, सांस चलेगी कि नहीं, तो सांस अंदर जाएगी तो सीना फूलेगा, बाहर जाएगी तो पिचकेगा, तो ये आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो जैसे देह का बदलेगा ऐसे सांस का बदलेगा तो आत्मा का भी बदलेगा, देह प्रमाण है ना, तो देह के तो इसलिए अब दो समय एक साथ रहता ही नहीं, तो हम क्या बताएं, तो कह दिया अनामिका जैसा अनिर्दिष्ट आकार, अनिर्दिष्ट आकार हम कह नहीं सकते ऐसा आकार है, तो ऐसी कह दो कि नहीं है आकार, है तो किसी न किसी आकार में वो रहता ही तो है, इसलिए नहीं है कैसे कह सकते, नहीं है नहीं कह सकते समझे, निराकार नहीं कह सकते, अनाकार नहीं कह सकते, लेकिन अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट कह नहीं सकते, क्योंकि हम जब तक कहते हैं तब तक वो बदल जाता है ना, कहा अनादि अनंत वृत्ति प्रवाह के भीतर पड़ने वाली अनंत पर्याय, यह समस्त द्रव्य और पर्यायों का समुदाय गेय है। अब गेय कहा तो गेय में ये सब आ गया, एक द्रव्य उसके अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, वो एक द्रव्य गेय हुआ, ऐसे अनंत द्रव्य वे सब गेय हुए, फिर अनंत जीव द्रव्य, और फिर अनंत जीव द्रव्य से अनंत गुण है पुद्गल द्रव्य, फिर एक आकाश धर्म अधर्म ये सब छह ही द्रव्यों की जितनी संख्या है वो सब मिला के द्रव्य, उन सब के गुण हैं और वो सब की पर्याय, इनका समुदाय उसका नाम क्या है, एक गेय, क्यों कि वो जानने में आता है बस, इसकी वजह से उसका नाम गेय पड़ गया, और इन्हीं सब में से एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है, अब लिखा ना एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है, जीव द्रव्य ज्ञाता है लिख देते ना, अब एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है ये क्या कह रहे, तो सभी जीव द्रव्य ज्ञाता नहीं है, अनंत सिद्ध देह में सब ज्ञाता नहीं है कि नहीं है, कि क्या कह रहे, जब ज्ञाता और गेय की हैसियत में बैठते हैं समझ आए ना, तो एक आत्मा बनता है ज्ञाता और बाकी के सब जीव भी अकेले गेय बनते हैं, और वो आत्मा गेय भी बनता है और ज्ञाता भी बनता है, क्या कह रहे समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो अपन सब यहां हैं और तुम्हारे विद्यार्थियों का नंबर लगता है, तो एक विद्यार्थी यहां आकर बैठ के प्रवचन करता है, करता ना तो सब श्रोता होते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा विद्यार्थी आता है फिर वो प्रवचन करता है, तो वो वक्ता होता है और सब श्रोता होते हैं, तो वक्ता और श्रोता में बंटवारा करें तो कैसे करेंगे, कि सभी वक्ता और सभी श्रोता कैसे काम चलेगा, सभी गे और सभी जीव गया, सभी जीव गे ऐसा नहीं, तुमको जब वक्ता श्रोता की बात करोगे तो उन सभी में एक वक्ता और बाकी सब श्रोता ऐसा करना पड़ता है ना, अच्छा तो वो एक वक्ता ही है ना, बाकी सब श्रोता है तो वो तो सुनता नहीं होगा, यानी मैं जो प्रवचन कर रहा हूं तो मैं सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं ये बताओ, मेरे कान बंद थोड़ी करे, तो मेरी आवाज मेरे कान में भी जाती है कि नहीं? तो मेरे में दो क्वालिटी, एक वक्ता और एक श्रोता, और तुम में एक क्वालिटी सर। ऐसे एक कोई जीव द्रव्य ज्ञाता, एक कोई जीव द्रव्य, ये जो कहने का इतनी टेढ़ी भाषा में क्या बताना चाहते हैं कि वो जो एक एक जीव जान रहा है उसकी अपेक्षा बाकी के सभी जीव ज्ञेय हैं, वे ज्ञाता नहीं है। हमारे लिए तो ज्ञाता का काम नहीं करते ना, हमारे लिए तो ज्ञेय ही है ना, हम उनके ज्ञान से कुछ जान नहीं सकेंगे, इसलिए ज्ञाता नहीं है वे। वो हमारे तो जानने में ही आएंगे, समझ गए ना, वो हमारे जानने में ही आएंगे, उनके ज्ञान से हम कुछ जान नहीं सकेंगे, इसलिए वे ज्ञाता नहीं है। इतनी बात अपने एक विद्वान ने अजमेर में कह दी, हाँ झगड़ा हो गया, उपद्रव हो गया। ये कह रहे कि बाकी सब जीव द्रव्य गे हैं, ज्ञाता नहीं है। उसने गे नहीं कही थी, अजीब कही थी, है? और कोई आदमी नहीं था वो, ये पवन जी के पिताजी थे वे, ये कौन जनाम था, पंडित कैलाश चंद जी, वो गुरुदेव से पढ़ाते थे मैं, मैं मेरे लिए जीव हूं और बाकी मेरे लिए अजीब है, अरंत भी अजीब है, सिद्ध भी अजीब है। अजीब माने कि मेरे जीव से भिन्न, आप समझे ना, तो मेरे जीव से जो भिन्न है वो सब अजीब, तो अरंत मेरे से भिन्न है तो बफिलम। हम दुनिया को दो भागों में बांटना ना, तो एक भाग का नाम रखा जीव और एक भाग का नाम रखा अजीब, तो बोलो अरंत को कहां रखे, अजीब ही में रखना पड़ेगा, जीव में रखेंगे तो हमारा उससे अभेद हो जाएगा। आगे समझ ऐसा, अब मैं गया साहब तो मेरे से पूछा, तो मैंने सामान्य तरीके से बताया, तो बोले कि नहीं साहब एक पंडित आए थे और वो ऐसा ऐसा बोलते थे, तो हमने उनको ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत बहुत। तो मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई वो एक अपेक्षा है, जनागम की अपेक्षा है अध्यात्म की, और उसमें ऐसा कहा जाता है, हम नहीं मानते तुम्हारा ऐसा अध्यात्म और ये और वो, तो बहुत जोम में रहते हैं, समझे ना, वो जो ऐसे है ना, ऐसा ही नहीं कि अपने यहां जोम में रहने वाले लोग हैं, जो भी जो जानते हैं वो समझते हैं हम ही सर्वज्ञ हैं, सब जो कुछ जान रहे हैं वो हम ही सब कुछ जान रहे हैं और हमने सब देख लिया है, नहीं ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्या करो। अभी ऐसे हजारों लोग हैं इस देश में। अब यहां जिस प्रकार दाही को जलाती हुई अग्नि समस्त दाही जिसका निमित्त है, ऐसे समस्त दाह्याकार पर्याय रूपण में सकल एक दहन क्रिया जिसका आकार है, ऐसे अपने रूप परिणमित होती है। अब ये देखो, ये अग्नि पे उन्होंने घटित किया, तो वो आत्मा पे घटित करना थोड़ा सरल था, पर अग्नि पे घटित करना कठिन है। उदाहरण उन्होंने तो उदाहरण दिया कि अग्नि का काम है जलाना, तो किसको जलाती है अग्नि, तो वे कहेंगे दाह्य को, जैसे गे होता है ना ज्ञान का गे, तो दाहक का कौन होता है, दाह्य, दाहक माने अग्नि जलाने वाली, और दाह्य माने जो जलने लायक पदार्थ है, उसे ईंधन भी बोलते हैं, अग्नि और ईंधन, लेकिन वो जोड़ा बनाना है तो दाह्य दाहक गे ज्ञायक ऐसा बनाना पड़ता ना, इसलिए उन्होंने बनाया। अब वो कहते हैं कि अग्नि यदि एक चीज को जलाएगी तो सबको जलाएगी, और सबको जलाएगी तो एक को जलाएगी, ऐसा कैसे हो सकता कि इस दाही को तो जलाए और उस दाही को नहीं जलाए, अदाही को नहीं जलाएगी, अज्ञे को नहीं जलाएगी, तो कोई अदाही होता है। देखो अज्ञे तो दुनिया में कोई नहीं है, जो ज्ञान का विषय नहीं बने ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन अदाही तो है ना, अभ्रक है जो रेल का इंजन बनता है ना, जिससे उसमें अग्नि कोयला डाल देते हैं, अब कितनी भयंकर अग्नि जलाते हैं, और वो जल जाए तो वो सब खेल हो जाए, और वो नहीं जलता है तब तो वो गाड़ी का ईंधन बन के, और वो आगे चलती है कि नहीं चलती है, तो वो दाह्य नहीं है, क्योंकि बहुत मजबूत है, मजबूत के बाद उसमें अग्नि से नहीं जलने का गुण है, तो काय काय में होगा, बहुत मुश्किल होता है। अरे वो अभ्रक है, ये भीलवाड़ा के पास जमीन में खोद लो तो मिलता है, मिट्टी है, जैसे खनिज बोलते हैं ना निकलते हैं पदार्थ, अभ्रक जानते हो, वो है, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो बड़े काम में आती है इसलिए बड़ी हो जाती है। वो अपने पास भी है, ये रोजिना ईंधन अपन जलाते हैं ना, लकड़ी कंडा जो भी, तो उसके बाद भी कुछ रेख बची रहती है उसमें जो नहीं जलती है, वो पूरा कंडा जल के उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कहां गया, लेकिन थोड़ी राख नीचे जमीन में पड़ी रहती है। क्यों? वे परमाणु अदाह्य थे इसलिए नहीं चले। अब उस पर तुम किसी चीज पे उसे रख दो, राख को इस किताब पर, और उस राख पर फिर तुम आग रख दो तो कोई खतरा नहीं, वो जलेगी नहीं, समझे ना, क्योंकि वो जलने वाले परमाणु तो उसमें से जल गए। अब तो बे जो बई परमाणु बचे हैं जो जलते नहीं हैं, इसलिए गांव में क्या करते थे कि अग्नि को उसी राख से ढक देते थे, बर्तन से ढकने से नहीं रुकती थी वो, लेकिन ऊपर से राख से ऐसे ढक दो तो चुपचाप पड़ी रहती अंदर कुछ नहीं, क्योंकि वो राख को जला नहीं सकती, इसलिए वो किसी जब राख को जलाए तो फिर किसी दूसरी चीज को जलाए, जब तो राख को नहीं जला सकती तो वो बस वो अंदर पड़ी रहती, वो खुद भी नहीं बुझती, वो नहीं होती है, वो सुरक्षित हो जाती थी। तो अदाह्य पदार्थ, तो जैसे अग्नि जितने भी पदार्थ दाह्य हैं, तो एक दाह्य को जलाए और दूसरे दाह्य को नहीं जलाए, ऐसा थोड़ी है, यदि एक को जला सकती है तो वो सब दाह्य को जला सकती है, उस सामने वाले में जलने का गुण होना चाहिए। ऐसे ही जो ज्ञाता आत्मा एक को जान सकता है तो सबको जान सकता है जो ज्ञेय हैं, और सबको जान सकता है तो एक को जान सकता है, इसलिए कोई कहे कि एक को जानता है और सबको नहीं जानता, और सबको जानता है और एक को नहीं जानता, ऐसा कोई कहने वाला होगा? इसमें तो लिखा शांति जी जो है ना, इसमें तो कि जो एक को जाने वो सबको जाने, पहले लिखा जो सबको जाने वो एक को जाने, अटपटा लगता है, अरे सबको जाने तो एक को जाने, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात होगी? ऐसा कोई कहने वाला है बताओ? कोई एक आदमी का नाम बता सकते? ये ध्यान ही नहीं देते इस पर। अब मैं बताता हूं, जो वो कहते हैं कि स्वा को जानता है पर को नहीं जानता, और पर को जानता है तो स्वा को नहीं जानता, वे लोग ऐसे ही है ना, ये कह रहे हैं कि जो पर को जानेगा, पर माने अनेक, माने पर माने सब, बहुत है ना, तो जो सबको जानता है माने सब पर को जानता है, वो स्वा को भी जानेगा, और जो स्वा को जानता है वो पर को भी जानेगा। ऐसा होता ही नहीं है कि स्वा को जाने वो पर को ना जाने, पर को जाने वो स्व, जो ज्ञान पर्याय स्वा को जानती है वो गारंटी से पर को जानती है, वो ही ज्ञान पर्याय, और जो ज्ञान पर्याय पर को जानती है वो उसी समय गारंटी से स्वा को जानती है। नहीं जानने की तो है ही नहीं, अभी वो भी जिसे आप नहीं जानना कहते हो, तो कहते लब्धि रूप है, फलाने रूप है, जो भी है वो जानने रूप है। कहने में जब वो आत्मा का, ऐसा मैंने पढ़ा था अभी दो चार दिन पहले ही, कि जब वो आत्मा का अनुभव करता है तब पर को नहीं जानता है, बाकी के टाइम जानता है। वो तो एक मिनट को नहीं जाने तो स्वपर को जानने का जो स्वभाव है वो खंडित हो गया, तो वो तो सबसे बुरा समय कहलाया, तो तू मुझे सबसे अच्छा समय मानता है। कि नहीं वो पर को जानेगा तो फिर अपने को जानने में उतना कम हो जाएगा, इसलिए वो पर को थोड़ी देर को तो पर को नहीं जाने। अरे वो कहते हैं कि उसे जानने का स्वभाव ही खत्म हो जाएगा, फिर नहीं जानेगा वो। पर का जानना स्वा को जानने का विरोधी है ही नहीं, और स्वा को जानना पर के जानने का विरोधी है ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं है वो कहते हैं। अब निशा एक समय में एक ही चीज को जान सकते हैं, दो को नहीं जान सकते हैं, ऐसे जो बहुत चलते थे ना पहले, तो ये बहुत स्थूल कथन है वो है? फिर कहते देखो हम इस शेर की भी फोटो को जान सकते हैं ना, तो उस वक्त ये फोटो को नहीं जान सकते, ऐसा बताते हैं एक इधर एक इधर। मैं आपसे पूछता हूं एक कोई जान सकते हैं ना, ये उंगलियां कितनी है? तुम तो एक ही को जान सकते हो ना, तो जब इसे जानेंगे जब इसे नहीं जानो, इसे जानो इसे नहीं जानो, दो कैसे बोल रहे? दो तुम्हें एक साथ जानने में आ रहे हैं, इतना क्लियर है क्या? तो वो इतना स्थूल उपदेश है कि अपन कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान वालों को, भैया तुम अपने पाठ्य पुस्तकों में मन लगाओ, ये उपन्यास उपन्यास पढ़ते रहोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो ऐसा स्थूल उपदेश है वो कि तुम उसको जानोगे तो इसको नहीं जान पाओगे। फिर यही हमने तुम्हारे मुंह से सुना कि तो बहुत पढ़ता रहता है, जी पढ़ता रहता है और इसको नंबर भी अच्छे आते हैं, और इसको जो 24 घंटे एक ही चीज को पढ़ता रहता है फेल हो जाता है। ऐसे ही कमाल तुमने बताए थे ना कल परसों परिचय में, इसको ऐसा हो जाता है इसको ऐसा हो जाता है, तो स्वभाव क्या है? यानी हमने जबरदस्ती उसको शत्रु बना लिया जो हमारा शत्रु था ही नहीं, जिसका तरका जानना स्वा के जानने का विरोधी नहीं था, स्वा को जानना पर के जानने का विरोधी नहीं है, और दोनों को एक साथ जाना जा सकता है, और जानते हैं अनुभूति के काल में भी, समझे ना? वो तो नहीं जानते कहते अभी अज्ञानी नहीं जानते, ज्ञानी जानते होंगे, नहीं अज्ञानी भी जानते हैं, बस सिर्फ वो इतना नहीं जानते कि हम इसे जानते हैं, जानते हैं और ये नहीं जानते कि जानते हैं। अत्यकारिद्र भगवान आत्मा प्रति समय अनुभूति में आ रहा है ना, तो ये नहीं जानता हूं कि ये मैं हूं, है ना? ये नहीं जानता है कि ये मैं हूं। हमारे पिताजी को यहां पसली में दर्द होता था, तो बहुत सेवा करते थे, सकाई करते थे, रात रात भर उस लगा करके, उस जमाने में जैसा था। अब मान लो उनको हार्ट का था, अब ये नहीं जानते थे जी हार्ट की बीमारी, समझते पसली में दर्द है, वो सेकते हैं तो ठीक हो जाती है, हैंडल सेक में ठीक हो जाती होगी, अब एक इसी में बीच में एक दिन चला जाता है आदमी वही पसली पसली के दर्द में, है? तो उसे दर्द नहीं होता था। हाँ पसली का जानता, वो ये नहीं जानता ये हार्ट का दर्द है, ये बहुत खतरनाक दर्द है, ये नहीं जानता है, तो खतरनाक भी दर्द होता रहता है और वो अपने काम में ही लगा रहता है, खाता ही रहता है पीता ही रहता है। ये नहीं, वो दर्द उसके ज्ञान का गेय बना क्या नहीं बना, तो उसे तो जानता है लेकिन उसे नहीं जानता कि ये चीज है, बस इतना सा ज्ञान है। क्या पेज है भाई, मेरे पेज पलट गए हैं, जो ज्ञाता अभी समस्त गुण पदार्थों सहित संपूर्ण पदार्थों के जानने रूप नहीं पड़ रहा है, वह अभी संपूर्ण गुण पदार्थों सहित अपने आत्मा को भी नहीं जान रहा है। देखो जो पर को नहीं जान रहा है तो अपने को भी नहीं जान रहा है, आ गया ना क्लियर? तात्पर्य यह है कि जो सर्वगुण पदार्थों सहित सबको नहीं जानता, वह सर्वगुण पदार्थों सहित स्वयं को भी नहीं जान सकता। इसी प्रकार जो सर्वगुण पदार्थों सहित स्वयं को नहीं जानता, वह सर्वगुण पदार्थों सहित पर को भी नहीं जान सकता, क्योंकि स्वपर को सर्वगुण पदार्थों सहित जानना एक साथ ही होता है, केवल ज्ञान में ही होता है। अब मति ज्ञान में नहीं होगा, अब मति ज्ञान के हिसाब से तुम लगाते रहते हो, तो वो ज्ञान थोड़ी है, मैंने वो ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय नहीं है ना, और उसमें भी होता है, लेकिन तो अभी तो केवल ज्ञान की बात चल रही है ना, इसलिए वो कहते केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता कि इसको जरा साफ जानेगा, उसको मेला कुंजला जानेगा, उसे देर में जानेगा, ऐसा कुछ नहीं। सारे पदार्थों को अत्यंत स्पष्ट एक साथ जो जाने उसका नाम केवल ज्ञान है। इतने बार बार क्यों कह रहे हम इतने ना समझ हैं? तुम समझ लो कितने ना समझ हैं हम, है? इतने बड़े बड़े पंडित रहेगा उनकी जाने दो, अपन लोग भी दिन ना रात पढ़ रहे ना, और आखिरकार उससे फिर हमें अकर्ता स्वभाव प्रकट होना चाहिए ना, अकर्ता बुद्धि आनी चाहिए ना, लेकिन रंच मात्र भी आती दिखती है ना, इसलिए इसी कहेंगे कि नहीं आता समझ में। और अब बराबर हम कहें जैसा कि सुना देते हो खड़े होके, तो कैसे कहें कि समझ में नहीं आता। तो इसी को कहते हैं समझ में आता है, और इसी को कहते हैं समझ में नहीं आता।